ओम शांति। सबने नहीं बोला ओम शांति, बहुत अच्छा। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ आप सबके दिल को भी चाहने वाला, हाँ, पसंद वाला होगा। जो समझते हैं हमें ये विषय बहुत अच्छा लग रहा है वो हाथ खड़ा कर। वेरी गुड, सबको पसंद है, हाँ? क्योंकि हम सब ब्राह्मण आत्माएं अपने जीवन में ये सदा ही चाहती हैं कि हमारा परिवर्तन होता जाए, और हुआ भी है, हुआ है ना, हाँ? उसके विस्तार में जाए तो कितना परिवर्तन हो चुका है। बाबा कहते भी हैं, मैं तो शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, ब्राह्मण से फरिश्ता बनाता हूं, देवता बनाता हूं, है ना। और परिवर्तन ही आत्मा को आगे बढ़ाता है, मंजिल तक पहुंचाता है। परंतु कई बार अक्सर ये अनुभव करते हैं कि हम जिस स्पीड से परिवर्तन चाहते हैं अपना, उतनी स्पीड बन जाए। बाबा भी हमें बार बार रियलाइज कराते हैं, क्योंकि बाबा इस सारी दुनिया का परिवर्तन करने आया है, इस सारी दुनिया को सतो प्रधान स्वर्ग सुखमय बनाने आया है। और उसके असली भागीदार तो कौन है, कौन है बोलो, हम। कितना नाज होना चाहिए, नशा होना चाहिए, क्योंकि बाबा हमको ही उस दुनिया में ले चल रहा है और हमको ही उसके योग्य बना रहा है, हमको ही उसका अधिकार भी देता है। लेकिन ये तो आवश्यक है कि मैं उसके काबिल बन जाऊं, तब तो आपको भी उसका पूरा सुख महसूस होगा। और उसके लिए ही परिवर्तन आवश्यक है, और वह परिवर्तन मेरा जल्दी हो जाए, सहज हो जाए। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बड़ी अच्छी बात बताई है कि दिल से महसूस करो, पहले जांच करो कि मुझे अपना क्या क्या परिवर्तन करना बाकी है। जो हो गया है वो भी भले सोचो, उसकी खुशी होगी। कई भाई बहन अपना बड़ा अच्छा अच्छा अनुभव सुनाते हैं, मेरा फलाना फलाना ऐसा संस्कार था, ऐसी आदत थी, ये अवगुण था, और मैंने कैसे ज्ञान के बल से, योग के बल से अपने इस स्वभाव को चेंज किया है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्योंकि बहुत ऊंचा है, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने का, संपूर्ण बनने का। बाबा ने तो डिग्री ही वो लेने के लिए कहा है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, है ना, मालूम है ना सभी को। तो परिवर्तन भी कितना चाहिए, बहुत चाहिए ना, उस तक पहुंचना है ना। परंतु बाबा ऐसी कोई बात हमें नहीं कहता जो मुश्किल हो या असंभव हो। संगम युग पर असंभव कोई बात है ही नहीं, सब कुछ संभव है, क्योंकि हमको सर्वशक्तिवान बाप का साथ है और उसकी मदद मिलती है। तो जहां विश्व का मालिक की अथॉरिटी ही हमको गाइड कर रहा हो, हमको सहयोग दे रहा हो, हमको उसकी विधि बता रहा हो, तो क्या कठिन है? फिर तो है कठिन? कोई कठिन नहीं। तो पहले तो बुद्धि से ये निकाल दो कि कठिन है, सब कुछ थोड़ा हो सकता है, जो कर सकते हैं वो करें, मेरे तो बस का नहीं है, सारे ही थोड़ा महारथी बन जाते हैं, सब थोड़ा आठ रत्नों में आ जाएंगे, मेरा जो पद होगा ठीक है, मेरी तकदीर में जो होगा ठीक है, ड्रामा में तो रोल फिक्स है, जो होना होगा सो होगा। ऐसे संकल्प महसूसता नहीं होने देते। तो कभी भी बुद्धि में इस प्रकार का संकल्प नहीं लाना, अपनी धरती को, फाउंडेशन को बहुत अच्छा, प्लेन, बढ़िया रखो। जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी करनी होती है तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन को ठीक करते हैं, उस धरती को देखते हैं, इसकी कितनी ताकत है, उसकी फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए, कितनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। तो बाबा भी हम बच्चों को ये बात समझाते ही रहते हैं, बच्चे हिम्मते मर्दे मददे खुदा। तो जब कोई बात हम दिल से महसूस कर लेते हैं तो नेचुरल है कि परिवर्तन करना सहज हो जाता है, कठिन नहीं रहता। जैसे देखो लौकिक रीति से भी कई बार जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, या कई बार जीवन में ऐसा ऐसा कोई संबंध जिसके साथ हमारा कोई हिसाब किताब होता है वो आ जाता है सामने, या कोई कोई ऐसी परिस्थितियां अचानक आ जाती हैं, हमारे दिल को वो बात चुभ जाती है, अंदर तक चली जाती है, तो हमारी अंतरात्मा कहने लगती है आज मैंने समझ लिया, मुझे बड़ा फील हो गया, अब मैं इस बात का पक्का ध्यान रखूंगी, अब जिंदगी भर मेरे से ये गलती नहीं होगी। या ठोकर लग जाती है कोई बात की, या घृणा नफरत आ जाती है, तो कितनी जल्दी हमारा परिवर्तन हो जाता है, छूट जाती है वो बात। ऐसे होता है ना, कई बार आपने अनुभव किया होगा, छोटी छोटी बातों में भी कई बार ऐसे होता है, जरूरी नहीं बड़ी बड़ी में। मान लीजिए कोई खाने पीने की चीज से भी कई बार किसको नफरत आ जाती है तो वो उसको दोबारा देखना भी पसंद नहीं करता। मान लीजिए वो सूट नहीं की बॉडी को, एलर्जी हो गई या अन्य कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो कहेंगे ना ना ना, मेरे सामने नहीं लाना, ये बिल्कुल भी नहीं लाना। तो दिल को जैसे वो हो गई तो छूट गई ना वो। ऐसे ही हमें अपने परिवर्तन के लिए ये आवश्यक है कि हम जिन बातों का परिवर्तन चाहते हैं उसको अपने दिल से महसूस कर लें। अब महसूस कैसे करें, ये बड़ी सोचने जैसी बात है। बुद्धि से तो कई बार समझते हैं, कई अपने लिए कहते हैं जब बाबा की मुरली चलती है या कोई विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता है या बाबा मिलन में आते हैं या बट्टी करने आते हैं तो अंतर आत्मा अंदर से सोचती है कि देखो मुझे अब ऐसा अपना ठीक करना है। पर फिर क्या होता है, परिस्थितियों में गए, घर परिवार में गए, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, ऐसे तो नहीं बाबा के आगे सिर हिला रहे हो, हाँ जी हाँ जी, नशा चढ़ गया और जब तक आबू रोड पहुंचो ट्रेन में बैठो और फिर वो नशा उतर जाए, वो तो ठीक नहीं है। या मुरली सुनने जाते हैं सेंटर पर, या यहाँ सुनी नशा चढ़ा, आज से तो अब मैं अपना अमृत वेला शक्तिशाली करके ही रहूंगा। फिर बाहर सबके संग में आए, बातचीत में आए, सेवा में आए, व्यवहार में आए, तो सोडा वाटर की तरह, जैसे बाबा मिसाल देते हैं, वो नशा उतर जाता है। सोडा वाटर की बोतल खोलो ना तो क्या होता है, छू और थोड़ी देर रख दो तो क्या बन जाता है, ऑर्डिनरी पानी से भी खराब हो जाता है, उतना भी अच्छा नहीं लगता, उसकी वो वैल्यू ही नहीं रहती। तो ऐसे ही बाबा कई बार कहते हैं सोडा वाटर नहीं बनना। तो माना परिवर्तन के लिए ऐसे नहीं सिर्फ सोच लिया अच्छा ठीक है अब करना है, लेकिन फिर वही की वही चाल, दो दिन ठीक रहता है, सप्ताह भर ठीक रहता है, कईयों का तो महीने भर भी ठीक रहता है। माना जिस बात का परिवर्तन करना है फिर देखो तो वही का वही हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारा दिल महसूस करे, फील करे, रियलाइज करे, अंदर गहराई तक आत्मा को वो लग जाए बात कि बस अब मेरे को ऐसे नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि सबसे जरूरी ये है कि पहले इस समय के इस युग की वैल्यू को समझो। भले बुद्धि से जानते हैं कि संगम युग ही एक ऐसा युग है जो बहुत ही सभी युगों से महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, परिवर्तन का युग है। इसी युग से ही हम नीचे से ऊपर उठते हैं, बाकी युगों में तो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आते हैं, सतो प्रधानता से धीरे धीरे रजो तमो तमो प्रधानता में आते हैं, लेकिन एक ये एक छोटा सा युग है और यही एक छोटा सा ब्राह्मण जन्म है जो बहुत लंबा नहीं है, इसमें ही हम परिवर्तन होके ऊपर की ओर जाते हैं। तो हमको अभी के समय की वैल्यू को समझना है, ये बहुत आवश्यक है और उसे दिल से स्वीकार करना है, सिर्फ मुख से कहने की बात नहीं, या सिर्फ मुरली में पढ़ लिया, समझ तो नॉलेज तो मिल गई, नॉलेज फुल तो आप सब हैं, लेकिन उस नॉलेज के अनुसार मेरा सब कुछ रहे, मनसा भी वाचा भी कर्मणा भी, वो तब होगा जब मुझे उस नॉलेज की उतनी इम्पोर्टेंस होगी। तो इसके संगम युग के और ब्राह्मण जन्म की वैल्यू को पहले अंदर दिल से रियलाइज करो कि ये समय कितना इम्पोर्टेंट है। सारे कल्प में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, बोलिए, सब सब बोलो, नहीं तो नींद आएगी आपको, संगम युग, क्योंकि इस समय भगवान धरती पर आया है और वो हमको कह रहा है और वो हमसे करवा रहा है। जैसे देखो कोई प्रोग्राम होता है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, हम सब खुशी खुशी से देखने पहुंच जाते हैं, उस प्रोग्राम में भी जिस टाइम वीआईपी के आने का टाइम होता है, हाँ, बड़ा कोई आता है, चाहे लौकिक दुनिया से हो या ब्राह्मण परिवार से हो, तो हम उस टाइम की कितनी उत्कंठा रहती है ना, उसको देखने के टाइम उस टाइम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब नजर रखते हैं, सबको आकर्षण होता है, सबका ध्यान जाता है क्योंकि वीआईपी आया है। तो ये जो टाइम है हमारा, ये जो ब्राह्मण जन्म है, चाहे वो छोटा सा ही है, आपका तो 86 वर्षों का नहीं रहा ना, आप में से है जो 86 वर्षों से ज्ञान में हो, जब से संस्था की शुरुआत हुई थी, वो तो दादियां थी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, अब आप समझ ही सकते हो आपका ब्राह्मण जीवन कितना है। जितना भी आपको मिला, चाहे 10 वर्ष हुए या 40 वर्ष हुए या जितने भी वर्ष हुए, तो इतना ही टाइम आपको मिला अपने पूरे परिवर्तन को ऐसा करने का कि सारे ही युगों में, सारे कल्प में आप एक बहुत इम्पोर्टेंट आत्मा, ऑलराउंड एक्टर बन रहे हो। तो दादी गुलजार कहा करती थी हमेशा कि संगम युग का एक एक सेकंड कई कई वर्षों के समान है, जन्मों के समान है। तो अगर हमने उसके समय के महत्व को नहीं समझा कि हाँ हम कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे, धीरे धीरे ही तो होगा, तो ऐसे ही फिर परिवर्तन कब होगा? फिर वही संस्कार कर लेंगे, हो जाएगा वाला पक्का हो जाएगा। और बाबा को भी गें गें करने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते। हाँ, देख लेंगे, करना तो है, कभी तो हो ही जाएगा, अंत में कर लेंगे। लेकिन अंत में भी क्या होगा? धोखा हो जाएगा। कोई भी काम पहले से किया हुआ नहीं होता तो अंत में अक्सर करके धोखा हो जाता है। लौकिक पढ़ाई में भी जो बच्चे शुरू से ध्यान नहीं रखते और समझते हैं जब पेपर आएंगे तब देख लेंगे, तो जरूरी नहीं कि वो पूरा सक्सेसफुल हो जाए। और कितने ऐसे हैं जो धोखा खा लेते हैं, क्योंकि फिर अचानक में तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी काम की पहले से प्रैक्टिस की हुई होती है तो अपने में एक कॉन्फिडेंस होता है, अंदर से निश्चय भी हो जाता है कि मैं अवश्य जीत पाऊंगा। फिर भी कईयों को धोखा हो जाता है। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि पहले से ही हमारे अंदर वो अभ्यास, वो पुरुषार्थ चलता रहे तो हम अंत में भी पास होंगे। तो कितना थोड़ा सा टाइम हमको ये मिलता है हमारा ऐसा पुरुषार्थ रहे जो हमारा परिवर्तन होता जाए और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। मम्मा बाबा को ही हम देखें, उन्होंने कितनी जल्दी अपने को संपूर्ण कर लिया। मम्मा इतनी छोटी आयु में आई और यंग एज में ही इतना पुरुषार्थ कर लिया जो संपूर्ण होके अव्यक्त हो गई। तो क्या मैंने इतने वर्षों से इस समय इस ब्राह्मण जीवन का जितने भी वर्ष हुए हैं उतना अपना परिवर्तन किया? और ही उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, समय के साथ साथ चलना चाहिए, बल्कि आगे चलना चाहिए। और समय आगे और मैं पीछे रहूं तो फिर कैसे मैं मंजिल तक पहुंचूंगी? और बाबा ने तो यहां तक कहा हुआ है कि अगर आप खुद नहीं करेंगे तो समय आपसे कराएगा, और जब समय हमसे कराएगा तो मेरी ताकत उतनी नहीं रहेगी। जैसे कोई काम किसी से जबरदस्ती कराया जाए, कहकर कराया जाए, तो उसका उतना महत्व नहीं रहता है। तो फिर तो हमें खुद ही अंदर से महसूस होगा कि मैं पीछे रह गई आत्मा। एक बार बाबा का बहुत अच्छा संदेश आया था, दादी गुलजार ही वो संदेश लेकर आए थे। तो दादी ने सुनाया कि मैं जब वतन में गई तो बाबा के सामने दो लाइनें लगी हुई थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बाबा बैठे हैं और दो लाइनें क्यों लगी हुई हैं। ऐसे तो बाबा के सामने सारे बच्चे होते हैं, कभी कोई दृश्य कभी कोई दृश्य दादी देख के आते थे तो एक लाइन में भी मिल रहे होते थे, तो देखा तो दो लाइनें हैं। तो देखने के ढंग से ही दादी को जैसे ऐसे लगा कि कुछ तो बात है। वतन में तो सूक्ष्म भाषा होती है ना, कोई कहने की शब्दों की आवाज की भाषा नहीं होती। तो दादी ने सुनाया, मुझे देखने से ही आभास हुआ कि कुछ तो बात है जो ये दो लाइनें लगी हुई हैं। तो दादी बाबा के समीप तक गई तो बाबा से इशारे से पूछा, बाबा आज आपके सामने हैं तो सारे ही ब्राह्मण बच्चे थे, सारे ही ब्राह्मण बच्चे, ये नहीं कि एक लाइन बाबा के बच्चों की थी और एक बाहर वालों की थी, हाँ, जो ज्ञान में नहीं चलते। दादी ने देखा दोनों ही लाइनों में ब्राह्मण बच्चे ही हैं। तो दादी ने बाबा से पूछा, चलो अब आप भी सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने बैठ जाओ। हाँ, हम बता रहे थे संदेश का। तो दादी ने बाबा से कहा, बाबा आज आपके सामने मैं ये दो लाइनें कैसे देख रही हूं और सारे आपके ही बच्चे, बाबा के ही बच्चे हैं। तो बाबा मुस्कुराए बाबा ने कहा, बच्ची ये ब्राह्मण बच्चे ही हैं सारे, लेकिन एक लाइन है प्राप्ति वालों की और एक लाइन है पश्चाताप वालों की। तो बाबा के कहने से दादी सोच में पड़ गई कि बाबा के बच्चे एक प्राप्ति की लाइन में खड़े हैं और एक पश्चाताप की लाइन में खड़े हैं। तो बाबा तो भाप जाता था ना, बच्ची क्या सोच रही है। तो बाबा ने कहा कि अंत में यही होगा। उस समय बहुत बच्चे बाबा के प्राप्ति वाली लाइन में नहीं आ पाएंगे, पश्चाताप वाली लाइन में आएंगे। अब आप ही सोचो, वो पश्चाताप की लाइन में आने वाले कौन होंगे? कौन होंगे? आपकी बुद्धि क्या कहती है? जो अपना परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, जो परिवर्तन करते जाते हैं वो अभी से ही प्राप्ति का भी अनुभव करते जाते हैं, क्योंकि संगम युग है ही प्राप्ति का युग। शुरू दिन से बाबा हमको दे ही रहा है, दे ही रहा है, दे ही रहा है। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो बाबा हमारी झोली नहीं भरता है। कोई दिन बताओ, आज भी बाबा ने कितनी अच्छी झोली भरी ना हमारी ज्ञान रत्नों से। रोज मुरली का खजाना कितना मिलता है ना। ब्रह्मा बाबा का तन ठीक नहीं होता था तब भी बाबा हॉस्पिटल में रहते भी लिख करके भेजते थे ताकि मेरे बच्चों को खजाना मिलता रहे, कभी वंचित नहीं रखा। कितनी भी परिस्थितियां आई चाहे, आरंभ में यज्ञ की बट्टी के समय बाबा को बच्चों से अलग रहना पड़ा ऑपोजिशन करने वालों के कारण से, तो भी बाबा ने लिख करके मुरली भेजी और मम्मा फिर सब बहनों को इकट्ठा करके पढ़कर भी सुनाती थी और उसका अर्थ भी समझाती थी, विस्तार भी करती थी। कोई भी दिन वंचित नहीं रहा कोई। तो संगम युग प्राप्ति का युग है और प्राप्ति करने वाली आत्माएं सहज अपना परिवर्तन कर सकती हैं, क्योंकि प्राप्ति से महसूस होता है मुझे क्या मिला। खाली नहीं रहेंगे। जैसे आपकी कोई पालना करता है, माँ बाप पालना करते हैं, टीचर पढ़ाता है, वो पालना मिलती है, तो जो सयाने समझू होते हैं उनको सदा अपने माँ बाप का एक ऋण रहता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पाल करके बड़ा किया है, मेरे टीचर ने मुझे कितना योग्य बनाया है, उन्हें महसूस होता है और इसलिए वो आज्ञाकारी बन करके उनका कहना मानते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे जरूरी है महसूस करने के लिए अपनी झोली को प्राप्तियों से भरना। तो जब हम प्राप्तियां, हाँ प्राप्तियां भी हमारी कितनी सूक्ष्म और कितनी अथाह है, बेहद की है, यहां तक कि हम संकल्प और श्वास भी हमारा खजाना है। आज दुनिया में कोई ऐसा है, कोई ऐसी हस्ती जो अपने संकल्प और श्वास से कमाई कर रहा हो? सिर्फ सोच ले बस, नहीं कर सकते, और वो भी जन्म जन्मांतर की। हमको तो बाबा ने देखो कितना सहज करके दिया है। बच्चे आप तो 24 घंटे अपनी झोली भर सकते हो। बाबा की याद से ही आत्मा के अंदर कितनी शक्तियां, कितनी प्राप्तियां आ जाती हैं। बाबा तो कई बार उसका हिसाब गुणा में भी सुनाते हैं। हाँ, 0-0 लगाते जाओ तो 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 1,00,000 और क्या, हाँ अरब खरब बन जाएगा, पद्मपति बन जाएंगे। और कितना आसान है, हाँ 0 माना बिंदी लगाते जाओ, बाबा बिंदी शिव बाबा को याद करते जाओ, प्राप्ति है ना ये। ऐसे कितनी हमको ज्ञान खजाने की प्राप्ति, योग द्वारा प्राप्ति, धारणा जीवन द्वारा प्राप्ति, सेवा द्वारा हाँ प्राप्ति, पुण्य आत्मा बन रहे हम। तो प्राप्ति वाली आत्माएं अपने अंदर हर बात को जल्दी रियलाइज कर सकती हैं। जैसे देखो जो रोज मुरली सुनते हैं ना क्लास में आके, घर में भी रहने वाले, वो एक दिन नहीं आते, कहते कल मेरे को बड़ा अजीब लगा, अच्छा नहीं लगा, अंदर से खाली खाली लग रहा था, मुझे तड़प उठ रही थी, मैं किस घड़ी आश्रम जाऊं, मेरी मजबूरी थी, मैं आ नहीं पाई या आ नहीं पाया। क्यों ऐसा उसको हो रहा है? क्योंकि उसने प्राप्ति को अनुभव किया है, इसलिए हो रहा है। जैसे रोज खाना खाते हैं और एक दिन नहीं खाएं तो अंतर पता चलता है ना, कहेंगे आज तो मेरे हाथ पैर ढीले हो रहे हैं। हाँ, एक भाई था, रोज चाय पीता था, सभी पीते हैं अक्सर, कोई नई बात नहीं है, उसको मिली नहीं चाय दो दिन, कहता है मेरे दम ही नहीं है, तो ढीला, समझ ही ना आए पहले तो उसको क्यों, कुछ समझ में आया क्योंकि चाय नहीं मिली। चाय छोटी सी चीज है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, अनुभव की बात से मैं सुना रही हूं। हमको तो ईश्वरीय नशा चढ़ता है, कितना मुरली सुनकर, अमृत वेला बाबा से रूरिहान करके आत्मा की कितनी शक्ति बढ़ जाती है, कितनी खुशी बढ़ जाती है। तो बाबा ने जब वो संदेश दिया, दादी ने आकर के हम सबको सुनाया, कहा अगर अभी प्राप्तियां नहीं कर पाएंगे पूरी तरह तो बाद में पश्चाताप होगा, और पश्चाताप वाली आत्माएं ही परिवर्तन नहीं कर पाएंगी अपना, उस समय चाहेंगी भी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय तो बाहर का वातावरण खींचेगा, हाहाकार होगा, कहाँ हो पाएगा। अभी तो सब कुछ हमारे पास है, बुद्धि अच्छी है, तन ठीक है, धन है, जो चाहो कर सकते हो, समय है, संकल्प है, मन कितना अच्छा बाबा ने बना दिया है, इस समय तो हम अच्छी तरह से अपना परिवर्तन मालिक होके कर सकते हैं। लेकिन दिल से हमको इस बात को स्वीकार करना होगा कि मुझे अंत में पश्चाताप नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। जो भी व्यक्ति समय पर काम नहीं करता है, लौकिक रीति से भी देखो, बाद में उसको पश्चाताप होता है, और उस समय महसूस करने से कुछ नहीं होता, उस समय तो सिर्फ रोना आता है बस। जैसे कहते हैं ना, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फायदा, हाँ कहावत बनी हुई है ना। तो अभी ही हमको अपना परिवर्तन करना है, तो मींस अभी ही महसूस करना है, हमारे दिल से ये बात लग जाए कि हाँ मैं अपनी प्राप्तियों को वंचित नहीं होने दूं, मेरे हाथ से ये जाए नहीं। तो रोज ये हमें अपनी प्राप्ति को देखना है। जैसे देखो कमाई वाला व्यक्ति, बाबा कई बार बिजनेसमैन को भी याद करते हैं ना, कि उसको बड़ी अक्कल होती है, वो रोज रात को अपनी वो निकालता है जो सारे दिन की कमाई होती है, तो उसको पता लगता है आज थोड़ी कैसे हुई, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं कल इसकी कसर पूरी करूंगा। तो देखो होशियार होता है ना, तो उसको समझ में आ जाता है, महसूस हो जाता है कि आज गड़बड़ हो गई और कल मुझे इसे बिल्कुल ठीक करना है। तो अभी ही हमको अपने जीवन की इस ब्राह्मण जीवन में भगवान से हमको जो कुछ मिल रहा है उसको अच्छी तरह से भरपूर रीति से अपने अंदर भरते जाओ, तो फिर हमारी जो कमी कमजोरी होगी वो भी हम जल्दी समझ सकेंगे कि आज ये ठीक नहीं हुआ, या मेरा ये संस्कार अभी तक मिटा नहीं है। तो दिल अंदर कहेगा, अंतर आत्मा अंदर बोलेगी ये है महसूस करना। महसूस करना सिर्फ ये नहीं है, हाँ हमने मुख से कह दिया, हाँ मेरा है तो सही है संस्कार, मैं क्या करूं, ये महसूस करना नहीं कहलाता है। लेकिन दिल में वो बात लग जाए और हम बाबा से प्रॉमिस करें, और वो भी दृढ़ता से, ऊपर ऊपर से नहीं। तो जब कोई बात दिल को लग जाती है तो दृढ़ता सहज कामयाब हो जाती है, उसको प्रैक्टिकल करना इजी हो जाता है। दादियों ने देखो कैसे एकदम अपना परिवर्तन कर लिया। हमारे आगे तो दादियां भी थी, मम्मा बाबा भी था, सबको देख करके भी उमंग आ जाता है, हिम्मत आ जाती है, बाबा की मदद मिल जाती है। दादियों ने तो किसी को नहीं देखा, ब्रह्मा बाबा ने तो किसी को नहीं देखा, वो तो स्वयं ही आगे नंबर वन बन के अपनी हिम्मत से और बाबा में निश्चय रखने से कैसे आगे बढ़ता चला गया। और बाबा ने निर्णय लेने में भी देरी नहीं लगाई कोई भी, तुरंत अपने को समर्पित कर दिया। बाबा ने ये नहीं सोचा समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, बिजनेस का क्या हाल होगा, नहीं, क्योंकि बाबा ने अंदर से महसूस कर लिया कि जिस दुनिया को मैं देख रहा हूं ये तो राख की ढेरी होने वाली है। और इसलिए बाबा को इतने महंगे महंगे हीरे भी पत्थर समान लगने लगे कि ये मुझे नहीं चाहिए, और ज्ञान रतन ही मेरा खजाना है, और अब बाबा ने मुझे नई दुनिया के निमित्त बनाया है। कितना बाबा ने दिल से लगा ली वो बात, और इतना महान परिवर्तन कर लिया बाबा ने। तो हम सब भी तो बाप के बच्चे हाँ, बाप को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा के कदम पर कदम रखने वाले बच्चे हैं ना। तो हम छोटी छोटी बात में भी अपना परिवर्तन ना कर पाए, चलो पूरी तरह ब्रह्मा बाप समान सब कहते हैं, हम थोड़ा ब्रह्मा बाबा बन जाएंगे, ब्रह्मा बाबा जैसे तो बन सकते हैं ना, चलो उतना भी नहीं लेकिन फिर भी आगे नंबर वन तो बन सकते हैं ना। तो महसूस तो करना होगा ना, और उस महसूसता में आत्मा को सुख मिलता है, कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे नहीं समझना कि मेरे में तो ताकत नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती, नहीं, बाबा की मदद मिलती है। बाबा भी जानता है, जैसे देखो कमजोर बच्चा कोई काम करने लगता है, माँ बाप को खुशी होती है और वो उसको सहयोग देते हैं। छोटा सा बच्चा भी चलने लगता है, माँ चाहती है ये चले, और ये भी पता है ये चलेगा तो गिरेगा भी सही, तो ध्यान रखती है, नजर रखती है, उसको झट से पकड़ लेती है। तो जो बच्चे बाबा के सच्चे दिल से अपना परिवर्तन करते हैं, अंदर महसूस कर लेते हैं, तो बाबा भी अपने बच्चों को बहुत मदद करता है। तब बाबा कहते बच्चे हिम्मत नहीं हारो, और इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि अंदर चिंतन करो, डीपनेस में जाओ, बाहर बाहर से नहीं देखो कौन कैसा है, क्या कर रहा है, मैं तो इससे ज्यादा अच्छा हूं, ये तो इतना भी नहीं करता जितना मैं करता हूं, इस रीति से नहीं देखो, अपने अंदर झांको। अपने को देखो, ये बहुत आवश्यक है। औरों को नहीं देखो, औरों को देखना भी है तो उसके गुण देखो, लेकिन महसूसता के लिए सिर्फ अपने को देखो बस, कि मेरी स्थिति कैसी है, मेरी अंतरात्मा क्या चाहती है, मेरा दिल क्या गवाही देता है। ऐसे ही अपने आप को खुश भी नहीं करना है, जो कई बार कहते हैं बाबा, कई बच्चे मियां मिट्ठू बन जाते हैं, मैं तो बड़ी अच्छी हूं, मैं तो बड़ी सियानी हूं, मैं तो बहुत सेवा करने वाली हूं या करने वाला हूं, और इतनी कहां करते हैं, करते भी होंगे चलो, लेकिन मैं कोई कम थोड़ा हूं। ऐसे सिर्फ अपने को खुश नहीं करना ऊपर ऊपर से। तो जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रतन निकलते हैं, ऐसे अपने अंदर झांको तो आपको अपनी विशेषताएं और गुण भी दिखाई देंगे, लेकिन साथ साथ हम जो चाहते हैं मेरा परिवर्तन हो जाए वो भी पता चलेगा और महसूस होगा कि हाँ ये बात मुझे अपनी ठीक करनी है। तो जब भी फ्री समय मिलता है, क्योंकि ये अपने आप से अकेले से ही झांकने का है, जैसे देखो कई बार माताएं बड़ी होशियार होती हैं, कहती हैं आज घर में कोई ज्यादा काम नहीं है, पति भी बाहर गया हुआ है हाँ, या कोई बच्चे छुट्टी पे गए हैं, मैं अभी घर को अच्छी तरह देखूंगी, अंदर क्या गड़बड़ है, कहाँ गंद लगा पड़ा है, कौन सी फालतू की चीज है, या कौन सी चीज लानी बड़ी जरूरी है, अलमारियों को भी खोलकर खड़ी हो जाएंगी, समय भी सफल हो जाता है, घर भी अच्छा हो जाता है, और पता भी चल जाता है इस अलमारी में ये चीज व्यर्थ है, इतने वर्षों से पड़ी है, कभी यूज नहीं हुई है, या किचन में कौन सी चीज आ जाए जो जल्दी जल्दी खाना बनने में मदद हो जाए। करती है ना माताएं ऐसे, तो कोई बीच में इंटरफियर भी करता है तो कहती है मेरे को बीच में अभी हैरान नहीं करो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अपने आप से अपने को ही अंदर झांको, ये महसूसता खुद की है, और हमें कहें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और बाबा की मुरली से सुनेंगे तो और ही नशा चढ़ेगा कि हाँ मैंने खुद महसूस किया कि अब मुझे अपना इस बात का खाता ठीक करना है, मेरा योग का खाता और ठीक होना चाहिए, या सेवा और मुझे करनी चाहिए, मैं कम करती हूं, या धारणा में मेरी ये कमजोरी है, आपको शीघ्र पता लगेगा। और जब कोई चीज को हम समझ लेते हैं, पता लग जाती है, और अंदर दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तो महसूस करना हो गया, तो परिवर्तन सहज हो जाता है। जैसे शूद्र से ब्राह्मण सहज बन गए, उसमें तो पता भी नहीं चला। देखो कई अपना अनुभव सुनाते, मैं जब आया था ना ज्ञान में बहन जी, कमाल हो गई थी, कमाल। अब कैसे हो गई वो कमाल देखो, क्योंकि उस समय आपने बड़ी जल्दी स्वीकार कर लिया, महसूस कर लिया कि मेरी वो जीवन अच्छी नहीं थी, और भगवान ने मुझे कितनी अच्छी जीवन दी है। तो अब हम जब ज्ञानी बन गए, योगी बन गए, और अब हम महसूस नहीं करें, समझे नहीं, या अपनी कमी कमजोरी को स्वीकार न करें और कह दें कि नहीं नहीं चलता है, ये तो सब चलता है, और सारे ठीक हो गए क्या, और संपूर्ण बन गए क्या, या जब समय आएगा सब हम अपने आप बन जाएंगे। अचानक में कभी कुछ नहीं होता, बहुत ऐसे केस हैं जो फेलियर हो जाते हैं अचानक में, कहते लास्ट में तो योग ही करेंगे ना, बड़ा अच्छा योग लग जाएगा, अगर अभी नहीं किया तो उस समय कहां से लगेगा। एक माता आती थी हमारे पास, अभी तो शायद शरीर छोड़ गई, तो बड़ी पक्की पुरानी मम्मा बाबा के समय की, उसका पति जो है वो भी आता था, लेकिन वो उतना रेगुलर नहीं था, संपर्क में अच्छा था, ज्ञान को समझता था, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे रेगुलर की रीति से नहीं। तो वो माता कहती थी मेरे को इसी का बंधन है, इसके लिए मेरे को नाश्ता बनाना होता है, इसलिए मेरी कभी कभी क्लास मिस हो जाती है। तो वो ऐसे उसका व्यवहार होता था, कहना होता था, जैसे उसका पति में कोई रग नहीं है, उसका कोई जरा भी उसको वो नहीं है, और ही परेशान होती है उससे, और सोचती है खुद ही अपना सब कुछ कर ले, मेरा इससे क्या वास्ता, ये मानता तो है नहीं, इस रीति से मतलब बिल्कुल नष्टो मोह जैसे। तो हम भी समझते थे उसको और ही प्यार से समझाते थे, कोई बात नहीं, देखो तुम और ही निमित्त बनी हो इसका भी कल्याण करने के, आप अपने संग से इसको बल दो जो ये भी ज्ञान और योग में पक्का हो जाए। हम तो और ही ये समझाते थे उसको प्यार से। तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि उसके पति ने शरीर छोड़ दिया था। अच्छा बिजनेसमैन था, यहाँ मधुबन भी आया हुआ था। तो उसके पति ने शरीर छोड़ दिया तो हमारे पास फोन आया, तो हमको जैसे पता लगता है बहनें जाती हैं, और मैं उसके एक दो दिन बाद गई, पहले बहनें गई सब, उसका एक बेटा था एक बेटी, अभी भी है वो। तो जब मैं पहुंची मैं तो दृश्य देख के हैरान हो गई एकदम। मैंने कहा ये वही माता है, उसका तो बेहाल, रोए रोए जैसे लौकिक संसार में माताएं करती हैं, छाती को पीट पीट के। तो उसके बेटे मुझे कोने में ले गया, कहा ये वो मम्मा नहीं है, मम्मा बोलते हैं ना मम्मी मम्मा, कहा इसको तो पता नहीं क्या हो गया। वो भी हैरान हो रहा था क्योंकि वो भी संपर्क में तो था ही, बचपन से माँ बाप के बच्चे हाँ सुनते ही रहते हैं, वो भी बड़ा श्रूट बुद्धि था। उसको भी बड़ा अजीब लगा कि मेरी माँ जो मेरे बाप के लिए इतना डिटैच थी, उल्टा भी बोलती थी डांट भी लगाती थी, आज ये उसके मोह में इतना रो रही है। और यहाँ तक कि जब 13 दिन पूरे हो गए और हमने संदेश भेजा अब क्लास में आना शुरू कर दो, कहती मेरा तो अब दिल ही नहीं लगता कुछ, ना कुछ बनाने का ना कुछ खाने का, वो चला गया अब मेरी जीवन, अब मेरी क्या दुनिया रही। अरे जब हमने ये सुना हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो देखो इसको क्या कहेंगे, ये कितना बड़ा अपने आप से धोखा है, क्योंकि कभी दिल से ये महसूस ही नहीं किया कि मेरी इसमें कितनी रग है और मुझे ऐसे उसकी याद आएगी जो मुझे जीवन ही अच्छा नहीं लगेगा। तो हम ब्राह्मण आत्माएं, बाबा ने हमें बहुत त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाया है, बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है। तो ऐसे नहीं हो ऊपर ऊपर की बातों में, ऊपर ऊपर सेवा में, ऊपर ऊपर की खुशी नशे में, मैं अंदर से अपना परिवर्तन ही ना कर पाऊं, चेक ही ना कर पाऊं कि मेरी कौन सी कमजोरियां हैं और उसका विनाश अभी करना है, परिवर्तन अभी करना है, बाद में अंत में थोड़ा जब परीक्षा आएगी तो उस समय तो हम फेल हो जाएंगे। कई बार इवन सोचते हैं उस समय तो और करना ही क्या होगा, बहन जी योगी तो करेंगे, अगर अब भी नहीं हुआ तो उस समय नहीं हो पाएगा, अब भी मेरी धारणाएं नहीं हुई तो उस समय अचानक कैसे हो जाएंगी, होंगी भी तो कितने काल की। तो इसके लिए बाबा ने कहा वह बच्चे हर बात का बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो अब भी हमको अपने अंदर झांकना है, डीपनेस में जाना है, मन की एकांत स्थिति बनानी है कि मन कभी इधर जा रहा है कभी उधर देख रहा है, कभी वहां बिजी कभी यहां बिजी। हाँ जैसे दुनिया में गीत आता ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहीं गिरा कोई कहीं गिरा। हाँ हमारा दिल और मन तो किसके साथ है बोलो, ढीला क्यों बोलते हो? हाँ तो फिर देखो कोई बात होगी तो बाबा के साथ जुड़ा रहेगा, उस बात में विचलित तो नहीं हो जाएगा। ये महसूस करो तो सच्चे दिल से अपने आप को जब अंदर झांकेंगे तो महसूसता आएगी। उस गहराई में जाओ और गहराई में ही सेफ्टी है, उसमें ही हमारा कल्याण है। अंडरग्राउंड हो जाओ, जैसे इमरजेंसी में भी अंडरग्राउंड हो जाते हैं ना, हाँ? तो अपने मन और बुद्धि से अंदर जाओ, अपने अंदर, और साक्षी होके देखो खुद को, खुद से। जैसे कई बार आप अपनी फोटो खिंचवाते हो ना, या वीडियो बनती है आपकी, उस समय किसी को नहीं देखते, अपने को ही देखते, मैं कैसा लग रहा हूं। मैंने कईयों को देखा है, भाई दूसरे का फोटो भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, कहते मेरे को क्या, मैं कैसी लग रही हूं, मेरी आंखें कैसी लग रही हैं, मेरा चेहरा कैसे लग रहा है। एक्टर भी ऐसे देखता है ना करने वाला। इसके तो आप सब अनुभवी हो, आज के टाइम में तो सब अनुभवी हैं, कितने फोटो खींचते रहते हैं। वे कहते हैं ये अच्छा नहीं आया, दूसरा खींचो, ये भी अच्छा नहीं आप तीसरा खींचो। क्यों? क्योंकि अपने को ही देख रहे हो, सिर्फ अपने को। मैं ठीक लग रही हूं, ऐसे ही अपने अंतर आत्मा को, अपनी ही अंतर आत्मा को आप ही खुद चेक करो, वो फोटो निकालो अंदर का, और उसके लिए किसी दूसरे की मदद लेने की भी जरूरत नहीं है, खुद का खुद ही खींचो, झांको अंदर, पूछो अपने से, बाबा मैं आपकी आज्ञाकारी बच्ची हूं, अधिकारी आत्मा हूं, क्या मैं इस योग्य बन गई? तो महसूस होगा आपको अंदर कि नहीं, इतनी नहीं बनी, यहां बन गई तो और कितना बनना है मेरे को, क्योंकि मुझे तो पूरा अधिकार लेना है। दो दिन पहले ही बाबा के महावाक्य थे कि जो बच्चे मेरे बलिहार बलि चढ़ते हैं वो पूरा वर्षा लेने के अधिकारी बनते हैं। उस समय तो लास्ट में अच्छा भी नहीं लगेगा अगर आपको आधा वर्षा देंगे, हाँ अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। कोई भी चीज कभी बंटती है और आपको कह दिया जाए आप आधी ले लो, चलो वो तो थोड़ा सा मोमेंट्री होता है, अलग बात है, तो भी लगता है कि नहीं पूरा ही होता तो अच्छा था। तो मैं तो पूरे वर्षे के अधिकारी बनने वाली आत्मा हूं, तो मुझे अभी से उसकी तैयारी करनी होगी ना। तो ऐसे एकांत में अपने को देखो, ठीक है, महसूस करो दिल से, क्योंकि ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरी जीवन है, मैं आत्मा उसके लिए तैयार हो रही हूं, इसमें किसी और का कोई कनेक्शन नहीं है। यहां तक कि बाबा कहते हैं आप अपने किए हुए पुरुषार्थ को बांट भी नहीं सकते हो, कोई और को भी नहीं दे सकते हो। कई बार कई पूछते हैं ना, अच्छा चलो मैं ज्ञान योग करती हूं तो इसका भी भला हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। वो तभी होगा जब वो खुद करेगा। ये सूक्ष्म गति है, तो ये मेरा भाग्य कि मुझे सब कुछ मिला, खुशी होनी चाहिए। ये सबसे अच्छा तो ये जन्म मिला, ये युग मिला, जो भी प्राप्तियां हैं उसका भी नशा रहे, तो जल्दी समझ में आएगा कि क्या मेरे अंदर और होना चाहिए। तो महसूसता से यही भाव है कि हम भरपूर आत्माएं बन जाएं। स्थूल में देखो जब कुछ मिलता है ना किसी को, कोई एक आइटम कम मिले फटाफट उसी पे ही ध्यान जाता है, मेरे को छह चीज तो मिल गई, सातवीं नहीं मिली और भी है, हा? तो लेने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसे ही मुझे बाबा इतना भरपूर कर रहा है, मैं किसी भी बात से खाली ना रह जाऊं, वो पुरुषार्थ मेरा छूट ना जाए। ऐसे नहीं, ठीक है मुरली सुनना ही बहुत कुछ है, सुन ली ना, सेवा का मेरा नहीं है ना रोल, और किसका होगा? क्यों नहीं है रोल? हर एक का है। चलो धन से नहीं, तन से सही, तन से नहीं, मन से सही, संबंध से सही, ज्ञान रत्नों से सही, वो भी तो मुझे अपना जमा करना है ना। तब हम भरपूर आत्मा बन करके अपने जीवन का इतना अच्छा परिवर्तन कर लेंगे जो सहज अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को हर बात सहज करके देता है। कोई भी बात में बाबा ने हमें कोई तकलीफ नहीं दी है। यहां तक कि बाबा कहते मैं तो बच्चों को मेहनत करता भी नहीं देख सकता हूं, मेरी ही मोहब्बत में रहो, प्यार में रहो, एक बाबा बस दिल में बसा रहे तो अंदर महसूस होता रहेगा। तो परिवर्तन कोई कठिन नहीं है, और आप तो दुनिया बदलने वाले बाबा के साथ निमित्त बच्चे हो। आज भी देखो आपको कोई देखते हैं तो बाहर वाले समझते हैं ना, इनका जीवन तो हमारे से बहुत ऊंचा है, ये तो बहुत चरित्रवान आत्माएं हैं, बहुत शांति की आत्माएं हैं, बहुत योगी जीवन वाली आत्माएं हैं। तो दुनिया के आगे हम मिसाल हैं। फिर अगर हमारी कमियां दिखाई देंगी तो वो खाता कौन सा बन जाएगा? तो मुझे अपने आप को इतना भाग्यशाली, ऐसा ईश्वरीय खुमारी वाली आत्मा जो अपने मंजिल की ओर बढ़ती चली जा रही है, उड़ते चले जा रहे हैं, इस नशे में रखना है। तो जितना अपने को समय देंगे, खुद को खुद देखेंगे, ये बहुत आवश्यक है। जैसे शीशे में चेहरा रोज देखते हो, दिन में कई बार भी देख लेते हो, ऐसे में दिन में अनेक बार अंदर झांकूं, अपनी आत्मा को देखूं। गीत भी आता है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, वो कौन सा मुखड़ा? ये थोड़ा सिर्फ माथा कैसा लग रहा है और आंखें कैसे लग रही है, मुखड़ा माना इस मुखड़े में जो कुछ है, आंख नाक कान मुख, इनके द्वारा मेरे कैसे कर्म चल रहे हैं। ऐसे तो नहीं मैं वो भी देख रही हूँ जो नहीं देखना चाहिए, मैं वो भी सुन रही हूँ जो नहीं सुनना चाहिए, मैं वो भी बोल रही हूँ जो नहीं बोलना चाहिए, मैं वो भी खा रही हूँ जो नहीं खाना चाहिए। ये है अंदर से झांकना, तो महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा, दिल मानेगा हाँ ये मुझे अपना ठीक कर लेना है, बस। तो बदल गया, हो गया ठीक, अंदर हिम्मत आ जाएगी, महसूस हो जाएगा, तो पक्की हो जाएगी बात, क्योंकि दिल को लग गई तो पक्की हो गई, और जब पक्की हो गई तो ध्यान पर रहेगी, और जब ध्यान पर रहेगी तो परिवर्तन करते जाएंगे, करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।